कृष्ण तो उपस्थित सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम स्टडी सेशन में स्वागत है। और अभी हमने ये बहुत ही विशेष भजन गाया। आप में से कितने लोगों ने भजन पहली बार सुना है? सबने सुना है? अच्छा, एक दो जन है। तो ये जो भजन है इसको कहते हैं चोर अष्टकम। तो चोर और उसका अष्टकम, जैसे हमारे बहुत सारे अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम है, गोवर्धन अष्टकम है, मधुरा अष्टकम है, केवल अष्टकम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अष्टकम भगवान के 8 वर्सेस के अंदर भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसे बहुत सारे अष्टकम है, कई अष्टकम है जो शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, कई अष्टकम है जो वैष्णव आचार्यों ने लिखे हैं। ऐसे बहुत सारे भगवान के अष्टकम होते हैं। तो ये बहुत ही विशेष अष्टकम है जिसमें भगवान को एक चोर के रूप में उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। जनरली क्या होता है कि चोरी करना पाप है ना, हम सभी जानते हैं, और जो चोरी करता है उसको सजा मिलती है। लेकिन भगवान इतने विशेष है कि भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसको ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे युद्ध होता है और युद्ध में कोई पीठ दिखा के भाग जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कायर। रनशॉट नहीं कहते कायर कहते। लेकिन भगवान जब भागते हैं तो भगवान को रणछोड़ कहते हैं, है कि नहीं? जो ऐसे ही भागता है उसको तो कायर का दर्जा दिया जाता है। इंडियन ऐसा कहा जाता है कि रण में से अगर कोई भाग जाए तो इट इज वर्स देन डेथ, जो मृत्यु से भी बदतर है वो, कि वो पीठ दिखा के भाग गया। इसलिए क्षत्रिय लोग मर जाते थे लेकिन भागते नहीं थे कभी। लेकिन भगवान ने जो ये लीला की भागने की, जो जरासंध से वो भागे, तो वो बड़े फेमस हो गए। और आज गुजरात के अंदर उनका इतना फेमस मंदिर है रणछोड़ राय का, हजारों लाखों करोड़ों लोग जाते हैं उस मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो भगवान कोई भी क्रिया करते हैं तो समझना चाहिए कि वो बहुत ही दिव्य होती है, क्योंकि ये बात भगवान ने भगवद गीता में बताई है, पुष्टि की है। कौन सा श्लोक है, किसी को याद है? जी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे क्रियाएं जो है वो दिव्य है, और जो इस बात को भली भांति समझ लेता है वो इस दुनिया में वापस से नहीं आता। तो दिव्य है भगवान की हर लीलाएं, हर क्रियाएं। तो जी इधर आ जाओ। सो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो वो दिव्य है, तो इसलिए भगवान जब चोरी भी करते हैं तो उनकी चोरी को भी ग्लोरीफाई किया जाता है। और बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिनका नाम है बिल्व मंगल ठाकुर। आप में से कितने लोगों ने ये नाम सुना है? सिर्फ एक, दो। बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में आप जानते हैं? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है बिल्व मंगल ठाकुर, जो हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर एक बहुत ही धनी परिवार से थे और बिगड़ गए थे। जनरली ऐसा होता है कि जिसके पास बहुत धन, बहुत यश, बहुत कीर्ति वगैरह जो होती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो बिल्व मंगल ठाकुर ये बिगड़ गए थे और इनको एक वैश्या से बहुत प्रेम हो गया था। तो ये वैश्या के पास हमेशा जाया करते थे। उस वैश्या का नाम था चिंतामणि। वो चिंतामणि के पास जाते थे हमेशा बार बार। और एक बार ऐसा हुआ कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। सो पिता की मृत्यु हुई तो पुत्र का क्या कर्तव्य है कि उनका जो भी क्रियाकर्म है उसको सब करना चाहिए। लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के वो वैश्या के पास चले गए। तो पूरे गांव के जो लोग होते थे वो इनको बहुत ही, मतलब क्या बोलते, एकदम उसका मतलब इनकी मतलब भत्सरना करते थे और ऐसा सब चलता था। तो बिल्व मंगल ठाकुर को कुछ दिखाई नहीं देता था। तो जो प्रेमांध है, प्रेम तो भगवान के लिए होता है, लेकिन जो कामांध है, जो काम में अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। शर्म लाज उसको कुछ नहीं होती है फिर एक्चुअली। तो वो कोई सब कुछ शर्म वगैरह छोड़ छाड़ के और वो इस वैश्या के पास जाया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि इतना खतरनाक भयंकर बरसात हुई, पूरी बाढ़ आ गई पूरे गांव के अंदर। और इतना भयंकर बरसात थी कि कहीं भी कोई आने जाने का कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन उस बाढ़ में भी बिल्व मंगल ठाकुर उस वैश्या से मिलने के लिए गए। तो कैसे गए इसका भी वर्णन है कि सबसे पहले वो जब गए तो उन्होंने देखा कि इतनी भयंकर तूफान और नदी आई हुई है कि कोई भी जो नाविक है वो उस नदी के उस पार नहीं जाना चाहता। तो सभी नाविक ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने क्या किया कि कोई नाव जाने के लिए रेडी नहीं थी तो वो कूद गए नदी के अंदर। और नदी में कूदना ऐसा ही था कि अपनी जान से हाथ धो देना उस समय, कि इतना भयंकर, जैसे समझो कोई प्लेन में से उड़ रहा है, जा रहा है, और अगर कूद ही मारोगे तो मरने वाले डेफिनेट है। तो वो मरने का था, लेकिन उन्होंने वो भी चिंता नहीं किया, नदी में कूद गए। और वो कूद के और नदी में तैरते तैरते आगे निकले तो नाव वाव तो कुछ थी नहीं, तो उन्होंने देखा कि कोई कुंद जैसा, कुंद लकड़े का कुंद आ रहा है, उसी के ऊपर उन्होंने जबरदस्ती पकड़ लिया और पकड़ के उसको पार किया। लेकिन पार करके देखा तो पता चला कि वो लकड़ी का कुंद नहीं था, वो लाश थी, किसी की डेड बॉडी, नदी के अंदर किसी ने आत्महत्या कर दी होगी या बाढ़ के कारण कोई मर गया होगा। तो उसको पकड़ के और उसमें से दुर्गंध आ रही थी, दुर्गंध करके गए। और फिर वो गए तो वैश्या का घर ऊपर था, तो उनको ऐसा लगा कि अरे यू नो ये वैश्या ने मेरे लिए रस्सी डाली है नीचे, और वो रस्सी नहीं, वो सांप था, कोबरा। तो उन्होंने उस सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़ के और ऊपर आए। और जैसे वैश्या के घर में घुसे, वैश्या को तो पूरा एकदम शॉक हो गई वो देख के कि अरे इतना भयंकर, मतलब जान की बाजी लगाकर कैसे ये व्यक्ति मेरे पास आया है। तो उसने कहा कि अरे तुम ऊपर कैसे आए? तो बोले अरे ऊपर कैसे आए क्या, तुमने तो ये रस्सी छोड़ी है नीचे। तो उसने रस्सी, रस्सी किधर है? नीचे देखो, बोला सांप, बड़ा काला सा सांप। और वैश्या डर के बोले अरे सांप को पकड़ के तुम आए? और फिर बोले अरे दूर हटो, इतनी दुर्गंध कैसे आ रही है? तो बोले मैंने जैसे नदी में ना डुबकी लगाई आने के लिए तो मुझे लगा एक लकड़ी को पकड़ के मैं तैर रहा था, लेकिन वो लकड़ी नहीं थी, वो लाश थी, और लाश में से दुर्गंध आ रही थी। तो इतना जब वैश्या ने सुना ना, तो वैश्या को बहुत मतलब एकदम आश्चर्य हुआ और उसे बहुत धिक्कारा, और उसको कहा कि जितना तुम मुझसे मिलने के लिए प्रयास कर रहे हो, और मेरा ये शरीर जो है ये तो हाड़ मांस का शरीर है, इसमें क्या है, रक्त है, पीप है, यू नो ब्लड, यूरिन, पस, यही सब है। और इस हार्ड मास के शरीर के लिए तुम इतना भयंकर कष्ट उठा के, जान की बाजी लगाकर, और तुम केवल मुझसे मिलने के लिए आए, इसका थोड़ा सा भी परसेंटेज मेहनत तुमने भगवान को पाने के लिए किया होता तो शायद भगवान भी तुमको मिल गए रहते जितना तुमने जान की बाजी लगाई। और ऐसा लताड़ा उसको और कहा कि मेरी आंखों के सामने कभी मत आना, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। और ऐसा करके वैश्या ने उसको धुतकार के भेज दिया। तो जब वैश्या ने उसको इतना फटकारा और ऐसा हुआ, तब उसको चमक में आया कि अरे नहीं, मेरे को कुछ तो भगवान के प्रति करना चाहिए। और फिर वो अपने भक्ति में लगने की उन्होंने कोशिश की। तो भक्ति में लगे थे लेकिन पूरी तरह से फिर भक्ति में लग नहीं पाए। तो एक बार क्या हुआ कि कहीं किसी गांव में जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा, तो उस स्त्री के प्रति वापस से वो ललायित हो गए, और उस स्त्री के पीछे 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 जाने लगे, और पीछे 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 जाके और वो स्त्री के घर में चले गए जहाँ पर वो स्त्री गई। और आज की दुनिया में तो खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन वो एक अलग जमाना था जहाँ पर लोग अतिथि देवो भव, है ना, वो वाला सिद्धांत का पालन करते थे। अभी आजकल तो क्या है, हमारे वो प्रभु जी जोक बता रहे थे कि पहले ऐसा बोर्ड लगाया होता था कि अतिथि देवो भव, किसी के भी आप घर पर जाओ गाँव में और सब जगह पर अतिथि देवो भव। और खाली बोर्ड नहीं, मतलब पहले ऐसा मानते भी थे, लेकिन समझो अगर किसी ने एटलीस्ट बोर्ड भी लगाया है तो कम से कम ये तो मानता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देव के हिसाब से है। फिर थोड़ा आगे और जमाना खराब आया आगे, और उन्होंने लिखाया कि वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम, आ जाओ वेलकम करके। तो बोले ठीक है, अतिथि देव वगैरह है नहीं है, कम से कम यू नो आ जाओ, वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अभी जैसे जमाना आया उसमें लोग क्या लगाते हैं, कुत्तों से सावधान है ना, ये वाला बोर्ड लगाना शुरू कर दिया अभी। तो कोई व्यक्ति, और वो भी साधु था, और एक्चुअली वो साधु के ड्रेस में थे, तब तक वो साधु बन चुके थे, बिल्व मंगल ठाकुर साधु थे, और साधु के वेश में वो उसके घर में एंटर किए उस औरत के पीछे पीछे, कैसे, काम में अंधे होके ना, उनको काम में अंधे होके, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया कि औरत कहाँ जा रही है, उनके घर में चले गए। उसके पति ने उसका स्वागत किया साधु का, कोई साधु मेरे घर पे आया है, और उसको बोला कि बैठो, तुमको क्या चाहिए, और मैं तुम्हारी किस प्रकार से सेवा करूं, और ऐसा ऐसा करके। और तब बिल्व मंगल ठाकुर इतने निर्लज्ज थे उस समय, उस अवस्था में, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी स्त्री का भोग करना है। और समहाउ और अदर, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्या करे, पर साधु को तो मतलब ये भगवान का अरेंजमेंट था कि भगवान ने उनको ऐसा करवाया कि उन्होंने हामी भर दी, लेकिन बाद में बिलो मंगल ठाकुर को दिमाग में झटका लगा, समझ में आया कि अरे मैं क्या पाप करने जा रहा हूँ। और फिर जैसी वो स्त्री बिलो मंगल ठाकुर के पास में आई, बिलो मंगल ठाकुर ने कहा कि मुझे तुम्हारे बाल में लगाने की जो पिन है ना, जो जो औरतें बाल में लगाती है वो दो, मुझे पिन दे दो। तो उसने वो पिन निकाल के और बिलो मंगल ठाकुर को दिया, और बिलो मंगल ठाकुर ने वो दो पिन लेके और अपनी आँख फोड़ दी। उन्होंने कहा कि इस आँख की वजह से मैं स्त्री को देख के इसके प्रति मोहित हुआ था, इसी आँख को मैं फोड़ देता हूँ। और उन्होंने वो आँख फोड़ के आँख निकाल दी, और उन्होंने कहा कि मैया मुझे माफ़ करना, मैं काम में अंधा हो गया था, मुझे पता नहीं चला क्या करके, लेकिन कृपया मुझे आशीर्वाद दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और फिर वो चले गए, और उन्होंने इतनी ज़बरदस्त भक्ति की, इतनी ज़बरदस्त भक्ति की कि अंधे थे लेकिन भगवान प्रकट होके साक्षात उनके पास में आ गए और उनके साथ रोज लीला करते थे। सोचो, बिलो मंगल ठाकुर के साथ में भगवान आते थे। और एक दिन लीला करते करते बिलो मंगल ठाकुर ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ के और कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत टाइम से तुमको ढूंढ रहा था। एक्चुअली वो वृंदावन जाने के लिए गए, तो किसी ने कहा कि भगवान वृंदावन में है, तो वो जहाँ पे जिस भी एरिया में थे, शायद साउथ में थे कहीं पे, वहाँ से वो चलते 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 वृंदावन गए, और वृंदावन के अंदर जाके कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे कान्हा तू कहाँ है, ऐसा करके। और उसकी करुण पुकार सुन के कान्हा वहाँ पे आ गया एक ब्रजवासी बालक के रूप में, और बालक के रूप में नंदूलाल के रूप में वो आया, और नंदूलाल के रूप में आके वो उनसे बात करने लगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या है, ऐसा ऐसा करके, और क्यों कान्हा को पुकार रहे हो, वो तो बड़ा लंपट है, ये है वो है, ऐसे उनकी चर्चा चल रही थी। और उस चर्चा के बीच में बिलो मंगल ठाकुर को पता चल गया कि ये कृष्ण है, क्योंकि भगवान छुपे थोड़ी रह सकते हैं भक्तों से। तो उसने हाथ पकड़ लिया उसका, और हाथ पकड़ा और बोले अब तो तुमको छोड़ूंगा नहीं। पर किसी प्रकार से कृष्ण को कौन पकड़ सकता है क्या? नहीं, कृष्ण को कोई नहीं पकड़ सकता। इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण को पकड़ सके। कृष्ण के पीछे बहुत लोग भागते हैं, है ना। हम लोग दामोदर लीला में भी कई बार ये बात और मुद्दा उठाए हैं कि यशोदा माई पीछे पीछे भाग रही है, कृष्ण आगे भाग रहे हैं, कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? कृष्ण केवल अपनी मर्जी से ही बन सकते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। और उनके पीछे पीछे काली यवन भागा था, लेकिन वो भी उसको पकड़ नहीं सका कृष्ण को। कृष्ण इज फास्टर देन द फास्टेस्ट एंड ही इज द स्विफ्टर देन द स्विफ्टेस्ट, यू नो, वो सबसे तेज भाग सकते हैं, कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो कृष्ण को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के और बोले अभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कृष्ण छूट गए उनके हाथ से। और छूट गए तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कृष्ण से। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, तुम मेरे हाथ से तो छूट गए हो, लेकिन मेरे दिल से छूट के बताओ तो मैं तुमको मानूं, मेरे हृदय से निकल के बताओ, मेरे हृदय से छूटो तो मैं जानूं। वैसे तुलसीदास जी ने भी ऐसा सिमिलर कुछ दोहा कहा है, उन्होंने कहा हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जानी मोहे। तो बोले मुझे निर्बल समझ के और तुम हाथ छुड़ा के जा रहे हो, लेकिन मेरे हृदय से निकल के देखो, मेरे हृदय से अपने आप को छुड़ा के देखो तो मैं जानूं। और वो बिलो मंगल ठाकुर भगवान के इतने बड़े भक्त हुए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं लिखी भगवान के लिए, और आचार्यों में एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य वो माने जाते हैं हमारे। तो उन्होंने ये चोर अष्टकम लिखा है, जो पुरुषोत्तम मास में भगवान के ग्लोरिफिकेशन में बहुत जगह पे बहुत मंदिरों में गाते हैं इसको, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये भजन लिखा है। तो इसका थोड़ा सा हम पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अभी किशोरी ने बहुत अच्छी तरह से गाया, इसका एक दो सेंटेंस स्टंजा मैं गाता हूँ और फिर इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदुकुल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरम नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।